नमस्ते, जय शिवाय। आज हम बात करेंगे कि वो जो चित्त की पांच अवस्थाएं हैं, जो हमने पिछले वीडियो में समझी थी कि चित्त की पांच अवस्थाएं होती हैं। पहली अवस्था थी क्षिप्त, दूसरी अवस्था थी मूढ़, तीसरी अवस्था थी विक्षिप्त, चौथी अवस्था थी एकाग्र और पांचवी अवस्था थी निरुद्ध। ठीक है, तो चित्त की ये जो पांच अवस्थाएं हैं, पतंजलि ने योग दर्शन में, योग सूत्रास में, योग दर्शन में, उन्होंने योग सूत्रास में क्या लिखा कि ये जो पांच अवस्थाएं होती हैं, पहली बात तो उसमें लेवल्स हैं, है ना। एक कम लेवल है, लो लेवल है, एक मीडियम लेवल है, एक हाई लेवल है ना। कि कोई इंसान लो लेवल पे क्षिप्त है, डिस्टर्ब्ड है, क्षिप्त चित्त का है, चंचल चित्त का है, या मीडियम लेवल पे उसका डिस्टर्ब्ड है चित्त, या बहुत ही हाई लेवल पे डिस्टर्ब्ड है, क्षिप्त है चित्त। ऐसे ही मूढ़ के लिए, फिर ऐसे ही विक्षिप्त के लिए, और फिर ऐसे ही एकाग्र के लिए, और ऐसे ही आपका निरुद्ध के लिए। ठीक है, कि कितने लेवल पे क्या है। अब पतंजलि ने जो योग सूत्रास में अष्टांग योग समझाया है ना, क्रिया योग जो उन्होंने समझाया, वो उन्होंने कैसे समझाया कि जैसे यम यम होगा, सबसे पहले यम होगा, नियम होगा, है ना। तो दो हो गए, तीसरा हो गया आपका आसन, फिर प्राणायाम, फिर प्रत्याहार, आप ऑर्डर ठीक कर लेना उसका, फिर ध्यान, धारणा, ध्यान, समाधि, है ना। ऐसे छह और हो गए, और दो यम नियम, आठ हो गए। तो अभी एक समझने वाली बात क्या है कि उन्होंने योग की जर्नी को, पूरे अध्यात्म के मार्ग को, उन्होंने ये आठ स्टेप्स में डिवाइड कर दिया, है ना, आठ चीजों में डिवाइड कर दिया। अब ऐसा नहीं होता कि ये जो आठ स्टेप्स हैं, ये एक के बाद एक चलने हैं, ऐसे नहीं होता। आठ स्टेप ये कोई ऐसे सीढ़ी के स्टेप नहीं है कि एक सीढ़ी चढ़ ली तो अब दूसरी चढ़ेंगे, तभी तीसरी चढ़ेंगे, तभी चौथी चढ़ेंगे, ऐसे नहीं होता। कैसे समझना चाहिए इस बात को कि जो नियम कर रहा है उसके अंदर यम ऑलरेडी है ना। तो वो यम के साथ साथ नियम चला रहा है ना। फिर कोई प्राणायाम कर रहा है तो प्रत्याहार कर रहा है ना, आसन कर रहा है, तो वो बाकी के उसके अंदर चल रहे हैं, ऑलरेडी चल रहे हैं, उनको वो फॉलो कर रहा है, उनको, उनके ऊपर वो चल रहा है। ऐसा नहीं कि यम हो गया, कुछ दिन यम फॉलो कर लिया, खत्म हो गया, अभी फिर नियम करेंगे, या प्राणायाम कर रहे हैं तो किसी आसन में नहीं बैठेंगे, ऐसा पॉसिबल कैसे है ना। या हम धारणा लगा रहे हैं तो प्रत्याहार नहीं होगा, प्रत्याहार करने की जरूरत नहीं है, ऐसे नहीं होता है। तो सारे स्टेप्स एक साथ चलते हैं, सब सारे स्टेप्स आपके अंदर बिल्कुल इनबिल्ट फंक्शन के जैसे हो जाते हैं, है ना। अब कोई इंसान, जैसे कि इस बात को ऐसे समझ लेना चाहिए, कोई चल रहा है जमीन पर, ऐसे सीधा सीधा चल रहा है, तो कोई चलेगा तो ऐसा थोड़ी कि उस वक्त उसका हार्ट नहीं बीट कर रहा है, दिल नहीं धड़क रहा है, धड़क रहा है ना, उसके धड़कन है ना, उसके अंदर प्राण शक्ति भी चल रही है उसके अंदर, और उसके अंदर उस टाइम पे डाइजेशन भी चल रहा होगा, और उस टाइम पे उसके अंदर और भी बहुत कुछ चल रहा होगा, उसके शरीर की सारी क्रियाएं चल रही होंगी, और वो आंख से देख भी रहा होगा, कान से सुन भी रहा होगा, है ना। तो सारी सारे फंक्शन एक साथ चलते हैं ना। तो ऐसे ही योग के जो आठों स्टेप जो उन्होंने बताए, वो आठों एक साथ चलते हैं, है ना। हाँ, वो अलग बात है कि कोई अभी धारणा तक पहुंचा है, ध्यान तक नहीं पहुंचा, है ना। तो एटलीस्ट धारणा तक है, तो यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार, और फिर उसके बाद धारणा, तो वहां तक उतने सारे स्टेप उसके साथ चलेंगे। कोई ध्यान में पहुंच गया है तो उसके अंदर यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा, वो उतनी चीजें एक साथ चलेंगी, तब वो ध्यान में जाता है ना। तो वो 24/7 की आपकी 24 घंटे की दिनचर्या, रोज रोज की एक एक मिनट की दिनचर्या चेंज करने वाली बात है ना। तो ऐसे, तो वो उन्होंने ये जो पूरा समझाया, प्लस फिर उन्होंने क्रिया योग समझाया कि क्रिया योग में कैसे भक्ति कितनी जरूरी है, और ईश्वर को समर्पण कितना जरूरी है, और ऐसे करके उन्होंने क्रिया योग समझाया। तो जब ये सारी चीजें उन्होंने समझाई, सारी चीजें उन्होंने की, तो उन्होंने एक सबसे इंपॉर्टेंट जो चित्त की अवस्थाओं की बात की है ना, कि किस मनुष्य को, कैसे चित्त के मनुष्य को योग सिखाया जा सकता है ना, किसी भी तरह का अध्यात्म की जर्नी पे, अध्यात्म के मार्ग पे कौन है वो, कैसे चित्त का व्यक्ति चल सकता है। तो उन्होंने उसके लिए बोला कि एकाग्र चित्त का व्यक्ति होना चाहिए। तो उनके कहने का मतलब है कि जो क्षिप्त चित्त का है, मूढ़ चित्त का है या फिर विक्षिप्त चित्त का है, उन तीन चित्त के लोगों के बारे में वो आगे पूरे योग सूत्रास में कहीं पर भी बात नहीं करते हैं पतंजलि। वो तीन चित्त के लोग सिर्फ भोगी हैं और संसार में रहेंगे, और वो धर्म परायणता से रह लें और थोड़ा सा धार्मिक तरीके से जी लें, ऐसे बाकी के लोगों को उनका ध्यान रखना पड़ेगा कि वो ऐसा कर लें। फिर भी वो कभी करेंगे ऐसा, कभी नहीं करेंगे, कभी अच्छे कर्म करेंगे, कभी बुरे कर्म करेंगे। तो वो तीन चित्त के लोगों को लोग अध्यात्म के मार्ग पर नहीं चल सकते, है ना। और अगर वो कभी चलने भी लग गए तो उनका पर्पस कैसा रहता है अध्यात्म के मार्ग पे चलने का? अब मैं अपनी बॉडी को पूरा फिट बना लूं, है ना, बहुत सुंदर हो जाऊं, या मैं बलशाली हो जाऊं, या मैं कोई सिद्धि प्राप्त कर लूं, या फिर मैं कोई और तरीके की कोई पावर, कोई मंत्र की सिद्धि कर लूं, कुछ कुछ जाप कर लूं, ऐसे कुछ कुछ पर कुछ सांसारिक रीजन, कोई सांसारिक पर्पस रहता है उनका, है ना। आत्मा अभी तक वो उतना समझते नहीं है कि आत्मा आप, कि वो खुद आत्मा है और आत्मा का हित क्या है, आत्मा का अहित क्या है, उतनी बात वो समझते नहीं है। तो पतंजलि वो तीन चित्त के लोगों के बारे में, तीन तरह के चित्त के लोगों के बारे में कोई बात आगे नहीं करते हैं। और उन्होंने साफ साफ लिखा कि कोई अगर एकाग्र चित्त नहीं हुआ है, और एकाग्र चित्त के बाद भी उन्होंने एक और बात लिखी कि एकाग्र चित्त के अलावा शुद्धि जिसकी नहीं हुई है। मैंने आपको पिछले वीडियो में जब ये चित्त की पांच अवस्थाएं समझाई थी तो मैंने बताया था ना कि एकाग्र चित्त में भी अगर शुद्धि नहीं हुई है तो क्या होगा, वो एकाग्रता किस काम आ रही है, चोरी करने के, क्राइम करने के, कोई स्मगलिंग करने के, या संसार में किसी को धोखा देने के, झूठ बोलने के, और पता नहीं कितने कितने बुरे बुरे जो भी सब बुरे काम होते हैं, है ना। तो ऐसा व्यक्ति साइंटिस्ट भी हो सकता है लेकिन बुरा काम कर रहा होगा, है ना, ऐसा व्यक्ति म्यूजिशियन भी हो सकता है लेकिन फिर वो क्या कर रहा होगा, म्यूजिक से अपना नेम फेम बनाने पे जुटा हुआ होगा और हर तरह के ड्रग्स में घुस जाएगा म्यूजिक के बावजूद भी, सारे तरह के ऑब्सेशन पैशन, क्योंकि राग की अधिकता है, है ना, और शरीर से मिलने वाले प्लेजर की तरफ, शरीर से मिलने वाले सुख की तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान है, तो वो ऐसे करेगा। तो ऐसा व्यक्ति को तो अध्यात्म के मार्ग पर कैसे चलाएंगे ना, नहीं चला सकते हैं। तो एकाग्र चित्त के अलावा उन्होंने बोला कि शुद्धि होना जरूरी है, मन की शुद्धि होना, तो वो एक मेन पैरामीटर है शुद्धि होना, है ना, एक मेन रिक्वायरमेंट है। तो अब उन्होंने कहा कि अच्छा डिसाइपल, शिष्य, अच्छा सही शिष्य, अधिकारी बोलते हैं वो उसको योग दर्शन में और योग सूत्रास में, कि योग का अधिकारी कौन है। तो योग का अधिकारी ऐसे शुद्ध चित्त का एकाग्र व्यक्ति है ना, तो वो अधिकारी है। अब उसका क्योंकि मन इतना क्षिप्त नहीं है, चंचल नहीं है, तो गुरु जो बोलेगा वो उसको सुनेगा ध्यान से, सिर्फ सुनेगा नहीं, करेगा, उसको जीवन में पालन करेगा उन चीजों का, है ना। गुरु ने जो समझाया, जो भी पढ़ाया, जो भी सिखाया, उसको वो पालन करेगा। तो अब आप अगर इस हिसाब से देखोगे, अपने आसपास ही देखो आप, है ना, तो आपको थोड़ा सा, किसी को ऐसे बोलो मत जाके, ऐसे आपके, सिर्फ आपके जो लोग अध्यात्म के मार्ग पर चल रहे हैं, सिर्फ उनके समझने की बात है ना, तो अपने समझ के लिए, है ना, अपने ज्ञान के लिए सिर्फ आप देखो कि आपके पास पास कैसे चित्त वाले लोग हैं, है ना, और क्या उनकी चित्त की अवस्था बदलती है, है ना, मूढ़ से विक्षिप्त में, विक्षिप्त से क्षिप्त में, ऐसे करके कुछ बदलती है, या एकाग्रता में आ जाते हो, और शुद्धि कितनी है उनके अंदर, है ना। तो ऐसे मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे पूछते हैं कि अरे आपके चैनल पे व्यूज बहुत कम है, आपके वीडियोस पे व्यूज बहुत कम है। तो अब आप ये समझो कितने लोग हैं संसार में जो शुद्ध चित्त के हैं और एकाग्र हैं, बहुत कम लोग हैं, बहुत ही कम लोग हैं संसार में ऐसे, सांसारी लोगों की बात कर रहा हूं मैं, है ना। तो ज्ञान किसको दिया जा सकता है, अध्यात्म का ज्ञान, योग का ज्ञान किसको दिया जा सकता है, कौन ले सकता है एक्चुअली, दे तो सभी को रहे हैं, यूट्यूब पे वीडियो पड़े हैं तो सभी के लिए पड़े हैं ना, ऐसा थोड़ी कोई स्पेसिफिक कंट्री में चल रहे हैं या किसी स्पेसिफिक लोगों के लिए चल रहे हैं, ऐसा तो नहीं है। पब्लिक डोमेन में इंफॉर्मेशन ज्ञान पड़ा हुआ है तो सभी के लिए है, लेकिन ले कौन रहा है? सिर्फ वो ही लेंगे, उन्हीं के लिए होता है वो सब कुछ जो एकाग्रचित्त हो चुके। अब मेरे पास कोई क्षिप्त चित्त का व्यक्ति आएगा भी, अगर किसी भी गुरु के पास, सिर्फ मेरे पास नहीं, किसी भी गुरु के पास, किसी भी क्या बोलते हैं समाधि गुरु के पास, समाधि लगे हुए गुरु के पास कोई भी क्षिप्त चित्त का व्यक्ति आएगा तो क्या बताएगा? आज ये हो गया, कल वो हो गया, आज ये टेंशन था, अभी यहाँ पे ये टेंशन आ गया, अभी ये काम नहीं हुआ, अभी वो काम नहीं हुआ, अभी ऐसा नहीं हो रहा है, अभी वैसा नहीं हो रहा है। सिर्फ और सिर्फ अपना टेंशन का बखान करेगा, अपनी चिंताओं का बखान करेगा। उसको कोई इलाज बताओ, उसको कोई सोल्यूशन था, सुनेगा थोड़ी, वो सुनने की स्थिति में नहीं है वो, है ना? वो बताने से उसको कुछ सुनना भी नहीं है, सुनने का कोई असर नहीं होगा और वो कुछ उस सोल्यूशन के ऊपर भी काम नहीं करेगा। मूढ़ चित्त का व्यक्ति आ जाए तो कुछ बताएगा ही नहीं। जैसे घर में बैठा था ऐसे वहां आके बैठ जाएगा, गुरु के सामने आके बैठ जाएगा, कुछ नहीं होगा उसका भी, क्योंकि वो भी बंद है। चेतना उसकी बहुत ही कम मात्रा में उसकी चेतना है ना, मूढ़ हो चुकी चेतना एकदम, तो उसको भी कुछ बताने का फायदा नहीं है। और जो विक्षिप्त है वो तो ऑलरेडी कहीं पे दौड़ रहे हैं, बहुत तेजी से दौड़ रहे हैं किसी एक डायरेक्शन में, संसार में व्यापार करने के लिए, नहीं तो अपना व्यापार फैलाने के लिए, अच्छे कर्म बुरे कर्म, नहीं तो कुछ और करने के लिए, कुछ बहुत ही एक दिशा में क्षिप्तता उनकी मेंटेन्ड है ना, डिस्टर्बेंस उनका मेंटेन्ड है, बट वो ऑलरेडी कहीं भागे जा रहे हैं, उनको तो रोकना बहुत मुश्किल है, तो आते भी नहीं। विक्षिप्त वाले जो है वो कभी किसी आध्यात्मिक जर्नी पे कहीं पे नहीं आएंगे। हाँ, जब एकाग्र हो जाता है व्यक्ति, है ना, तो एकाग्रता में भी अभी कुछ टाइम तो एकाग्रता, कुछ जन्मों तक तो इसमें कई जन्म निकलते हैं, ऐसा नहीं कि एक आदमी एक ही जन्म के अंदर क्षिप्त से निरुद्ध तक पहुंच जाता है, ऐसा नहीं होता है, बहुत जन्म लगते हैं। आप देखो कि आपके पास पास वालों की चित्त की अवस्था कितने सालों में, कितने महीनों में जाके बदलती है, अगर बदलती है तो, है ना, और उस जब वो बदलती है तो वो उसका करते क्या है वो इस पे डिपेंड करता है कि कितनी शुद्धि हो चुकी है अंदर, है ना, कितने चित्त में शुद्धि है, सत्व कितना जागा हुआ है कि चेतना से चलते हैं, सही काम करते हैं, धर्म का पालन करते हैं, यम नियम का पालन करते हैं। तो पतंजलि का कहना था कि इसी कि यम नियम भी ऐसे लोगों को नहीं बताए जा सकते, हाँ हम फिर भी बताते हैं, चिल्लाते हैं गला फाड़ के और सारे गुरु और सिखाने की कोशिश करते हैं, या एकाग्र चित्त में शुद्ध चित्त के जो हो गए हैं वो बेचारे भी उनको बताने की, तीन चित्त वालों को कुछ बताने की कोशिश करते हैं कि देखो तुम ये गलत कर रहे हो, तुम ऐसे मत करो, तुमको तुम्हारे कर्म खराब मत करो, तुम अपने, है ना, इतना झूठ मत बोलो, तुम अपना कितना नुकसान कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, तो बताने की तो बहुत कोशिश करते हैं कि, लेकिन क्या उनको समझ आता है, सुनाई देता है? नहीं। लेकिन फिर भी ठीक है, अब बताएंगे तो भाई, क्या पता किस क्षण किसकी किसी की थोड़ी सी चेतना जागी हुई हो तो वो गलत काम करने से बच जाए, तो बताते तो हैं। लेकिन पतंजलि का कहना है कि यहाँ तक कि वो यम नियम कुछ भी, कोई भी अध्यात्म का मार्ग, कोई भी चीज उनको उतना नहीं बताई नहीं जा सकती, समझाई नहीं जा सकती। तो अब कहाँ से खेल शुरू होगा, अध्यात्म का मार्ग कहाँ से शुरू होगा? उन लोगों के लिए है अध्यात्म का मार्ग जो एकाग्र चित्त हो चुके हैं और जिनके अंदर शुद्धि आ चुकी है। तो अब उनकी शुद्धि को कैसे बढ़ाएंगे और शुद्धि कैसे आएगी, तो उसी के लिए उन्होंने कहा कि यम नियम का पालन करेंगे ही करेंगे, प्रत्याहार का पालन करेंगे, आसन लगाएंगे और प्राणायाम करेंगे। बहुत सारे लोग ऐसे सोचते हैं, मैंने कई बार ऐसा फील किया कि कोई कॉम्प्लेक्स सी क्रिया दे दो उनको करने के लिए, जिसमें प्राणायाम भी है, आसन भी है, कोई मुद्रा भी है, ठीक है, तो कोई कोई मंत्र भी है, ऐसे कोई कॉम्प्लेक्स सी चीज बना के उन्हें दे दो तो उन्हें लगता है अच्छा मैं बहुत बढ़िया योगा कर रहा हूँ, मैं बहुत बढ़िया तपस्या साधना कर रहा हूँ। वो ये नहीं समझते कि प्राणायाम ना अपने आप में एक सबसे बड़ी साधना है, चित्त की वृत्तियों को ढीला करने के लिए, लूज करने के लिए, उनकी आपके ऊपर पकड़ को छोड़ जाए वो पकड़ आप पे, है ना, वो राग आपके ऊपर अपनी पकड़ छोड़ दे, वो द्वेष आपके ऊपर अपनी पकड़ छोड़ दे, वो डर जो है, अभिनिवेश जो है, और जो रेजिस्टेंस है चेंज के लिए कि नहीं परिवर्तन तो बिल्कुल करो ही मत, मुझे अच्छा नहीं लगता, ऐसे ही वाली पकड़ छोड़ दे, उसके लिए प्राणायाम सबसे खतरनाक टूल है और सबसे कारगर टूल है। यहां तक कि जब कोई इंसान में, मान लीजिए किसी मनुष्य में राग द्वेष अभिनिवेश नहीं भी है और अस्मिताएं से वो लड़ रहा है, अस्मिताओं को अपनी तोड़ने की कोशिश कर रहा है, तब भी उस लेवल पर भी प्राणायाम एक बहुत कारगर टूल है। वही एक ऐसी चीज है कि अस्मिताओं, बस होता क्या है कि जब आप अस्मिता के लेवल पे पहुंच जाते हैं, अस्मिताओं के लेवल पे, तो प्राणायाम ना शरीर खुद ब खुद करने लग जाता है। आपकी दिनचर्या इतनी शुद्धि करते 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 कि आपके अंदर यम नियम बिल्कुल बॉडी के और आपके जीवन के और आपकी आत्मा के डिफॉल्ट फंक्शन बन चुके हैं, है ना, वो बिल्कुल ऐसे फंक्शन बन चुके हैं कि अब तो वो निहित हैं आपके आपके जीवनचर्या में, आपके जीवन में निहित है, समाहित हैं पूरी तरह से। तो अलग से बैठ के नहीं यम नियम करने होते हैं ध्यान करके, वो निहित है, इंसान चलता ही ऐसे है, करता ही ऐसे है, प्रत्याहार भी निहित है आपके अंदर, करते करते प्रैक्टिस करते करते वो आपके अंदर समा चुका है कि जो नहीं सुनना चाहिए वो सुनाई नहीं देगा। कहीं पर भी हैं फिर आप, है ना, जो नहीं देखना चाहिए था, जिसको देखकर कोई इनपुट अंदर लेना नहीं चाहिए था, वो नहीं होगा, अपने आप ही नहीं होगा, चाहे भले ही आंखें खुली रहें, कान खुले रहें। प्लेजर सीकिंग की तरफ जो छोटे छोटे सुख होते हैं, आप अपने इंद्रिय सुख जो होते हैं उनकी तरफ नहीं भागोगे, वो निहित है आपके अंदर, जाओगे ही नहीं, करोगे ही नहीं ऐसा। शरीर किसी ना किसी एक आसन में बहुत कंफर्टेबली बैठा रहेगा, टिका रहेगा, ये नहीं कि बहुत देर, थोड़ी देर सुखासन में बैठ गए तो हाथ पैर दर्द हो गए, वज्रासन लगा लिया तो हाथ पैरों में दर्द हो गया, कुछ नहीं, वो अलग से लगाने की, अलग से करने की भी जरूरत नहीं होती। शरीर हर हमेशा एक मुद्रा धारण करता है, शरीर हमेशा किसी न किसी एक आसन में रहता है, है ना, और शरीर के अंदर जो भी क्रियाएं चल रही हैं कि खाना खाया तो अपने आप कोई दूसरे तरह के तरह से प्राण की गति, प्राणायाम क्या है, प्राण की गति, है ना, और प्राण के चलने का एक तरीका, तो पंच प्राण वायु पर पूरा कंट्रोल हो जाता है, पंच प्राण वायु शरीर के साथ बिल्कुल सिंक्रोनाइजेशन में आ जाती है। तो एक तरह से कहना चाहिए कि आपकी पूरी एग्जिस्टेंस, आपकी वो पूरे ब्रह्मांड की एग्जिस्टेंस के साथ सिंक्रोनाइजेशन में आ जाती है। तो ये सब कुछ ऐसे निहित है ना, एक आपके अंदर निहित होता जाता है, आपके अंदर समाहित होता जाता है, उसको अलग अलग से बैठ के प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं रह जाती। और एक समय आता है कि ध्यान निहित हो जाता है, आप ध्यान ही हो जाते हो, तो उसका ये मतलब नहीं है कि हाँ सुबह 5 मिनट ध्यान लग गया था या आप 20 मिनट ध्यान लगा लिया बैठ के तब आप ध्यान ही हो गए, नहीं, आपकी नेचुरल अवस्था ही ध्यान है। उसके अलावा किसी और अवस्था में अगर आप रहते हो तो चित्त की वृत्तियों को निकाल रहे होते हो उतने टाइम, उनका विश्लेषण कर रहे होते हो, उसके पीछे आप अपनी अविद्या को ध्यान से देख रहे होते हो कि अच्छा मेरे अंदर अभी ये और बाकी है, ये मुझे करना है, ये बात मुझे समझ में क्यों नहीं आ रही, या मुझे इसके लिए क्या करना चाहिए, तो ऐसी चीजों पर विचार चल रहा होता है। नहीं तो व्युत्थान वृत्तियों के हिसाब से आप नहा रहे होगे, धो रहे होगे और कुछ तो क्रियाएं कर रहे होगे, खा रहे होगे, पी रहे होगे या सो रहे होगे, है ना, तो वित्तान वृत्तियां चल रही होती हैं। तो जब जो वृत्ति चलनी चाहिए, जब जो होना चाहिए, आपकी पूरी की पूरी एग्जिस्टेंस, पूरा का पूरा अस्तित्व उतने अच्छे से अलाइन हो जाता है, उतने अच्छे से चलने लग जाता है, फिर ऐसा व्यक्ति फिर आके समाधि में जाता है, है ना। तो कहने का मतलब है कि और ज्यादा शुद्धि, एकाग्र चित्त वाले जो हैं उनको आध्यात्म के मार्ग पर चलाया जा सकता है। और उनके चित्त की शुद्धि के लिए उनको क्या क्या बताया जाता है, पहले तो यम नियम पालन हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, कुछ देखिए। एक और बात यहां पर सबसे बड़ी समझने की है, जैसे कि मैंने कहा कि ये एक जन्म की, एक ह्यूमन लाइफ टाइम की, एक मनुष्य जीवन में अध्यात्म की यात्रा पूर्ण नहीं कर सकता है कोई भी एक जीवन में, है ना, वो कई जन्मों तक कुछ ना कुछ करता रहता है, कुछ ना कुछ चित्त की शुद्धि, कुछ ना कुछ यम नियम का पालन, कुछ ना कुछ प्राणायाम प्रत्याहार, कुछ तो करता रहता है। तो किसी जन्म में तो शुरू करेंगे ना, लेकिन आपको ये समझना जरूरी है कि हर व्यक्ति जो इस जन्म में आप जिनको देख रहे हो, आपके आसपास जितने भी लोग हैं, क्या वो सारे ही लोग इस जन्म में पहली बार शुरुआत करेंगे अध्यात्म के मार्ग पे चलने की? नहीं, ऐसा नहीं है। आप में से कितने लोग हैं जो कि पहले भी दीक्षा ले चुके हैं, पिछले जन्मों में जिन्होंने दीक्षाएं ली हैं, जिन्होंने पिछले जन्मों में तपस्या की हुई है, और वो फल, वो चेतना का स्वरूप, वो इतना ज्यादा अस्तित्व का शुद्ध होना, वो सब शुद्धि, वो सारी चीजें, वो पहले से क्यों आपके अंदर क्यों आज की डेट में दिखाई देती हैं या एग्जिस्ट करती हैं? क्योंकि वो पूर्व जन्म की तपस्याओं का फल है ना? तो हर आदमी आज जीरो से शुरू करेगा ऐसा, ऐसी गलती ना बहुत सारे ऐसे लोग जरूर करते हैं, स्पेशली जो इस जन्म में पहली बार स्टार्ट कर रहे हैं। वो उन लोगों को देखते हैं जिनको देख करके उन्हें लगता है ये तो कोई यम नियम का पालन नहीं करते, ये तो कोई प्राणायाम नहीं कर रहे बैठ के, और ये तो कोई प्रत्याहार नहीं करते, इनको तो पता नहीं है प्रत्याहार क्या है और करना है और क्या क्या पता ना, आपको नहीं दिखाई दे रहा है क्योंकि अभी आप उतने छोटे लेवल पर हो, उतने उतने लेवल पर हो जहां से कुछ पहली बार शुरू कर रहे हो आप, तो आपको शायद समझ में नहीं आ रहा है कि वो चीजें उनके अंदर निहित हैं, है ना? उनके अस्तित्व में, उनका अस्तित्व उतना शुद्ध हो चुका कि अब वो चीजें उनके लिए एक डिफॉल्ट फंक्शन के जैसे हैं, जैसे उनका दिल धड़कता है, सांस चलती है, ऐसे ही यम नियम चलते हैं, ऐसे ही प्राणायाम प्रत्याहार चलता है, और प्राण उनकी प्राण की गति उनकी जो है वो स्थिर हो चुकी है, सेट हो चुकी है उनकी बॉडी के अंदर, उनके अस्तित्व के अंदर। तो नहीं करेंगे बैठ के वो सब कुछ, वो करते दिखाई भी नहीं देंगे, वो सीधे ध्यान में रहते हैं, और वो जब ध्यान में भी रहते हैं तो ध्यान तो आप तो किसी दूसरे का ध्यान या ध्यान की अवस्था को नहीं समझ सकता है वो व्यक्ति जिसने को खुद को कभी ध्यान ना लगाओ, वो दूसरे की ध्यान की अवस्था, समाधि तो बहुत ही दूर की बात है, ध्यान की अवस्था को नहीं समझेगा वो। तो ऐसे गलती करते हैं कई बार कि नहीं ये तो नहीं करते ऐसे बैठ के, या इनको तो हठ योग नहीं आता। अरे अब हर इंसान हठ योग से शुरू करेगा क्या? सब सारे मनुष्य क्या इस वक्त हट आसन लगाने के लिए आए हैं, मुद्रा करने के लिए आए हैं? नहीं। तो एक गुरु जो है, समाधि प्राप्त गुरु जो होता है वो, या और भी बहुत सारे अच्छे गुरु होते हैं, वो समझ जाते हैं देखकर कि ये वाले शिष्य को, ये वाले स्टूडेंट को कहाँ से शुरू कराना है ना, कहाँ से ये रास्ता अपना शुरू करेंगे, इनके चित्त की और ज्यादा शुद्धि के लिए इनके अंदर क्या चीज है जो अभी इनका डिफॉल्ट फंक्शन नहीं बना, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार, क्या चीज है जो अभी इनके अस्तित्व का हिस्सा नहीं बनी है ना, अस्तित्व की इतनी शुद्धि नहीं हुई है। तो गुरुओं को पता रहता है, लेकिन बाकी लोग जो नहीं समझते हैं वो ऐसे ही सोचते हैं कि अरे ये तो इनको आसन लगाने नहीं आते, इनको तो हठ योग नहीं आता, अरे ध्यान तक पहुंच चुके हैं तो अभी क्यों लगाएंगे, है ना? एक कितनी अच्छी बात थी, पतंजलि भी लिखते हैं इस बात को कि जो चीज आपके अस्तित्व का हिस्सा बन गई है ना, अब आप सांस लेना, जैसे कि एक एग्जाम्पल के तौर पर, उदाहरण के तौर पर आप समझिए कि सांस लेना आपके अस्तित्व का हिस्सा है ना, और 24 घंटे वो हिस्सा है बिल्कुल नॉन स्टॉप, जितने दिन आपका जीवन पैदा होने से लेकर मरने तक, जब तक आप जिंदा रहोगे, सांस लेना आपके अस्तित्व का हिस्सा है, आपके अस्तित्व का एक नॉर्मल क्रिया प्रणाली है, एक बढ़िया स्वाभाविक सी क्रिया प्रणाली है ना, नॉर्मल सा फंक्शन है वो। तो क्या आप सुबह 10 मिनट अकेले बैठ के सिर्फ अलग से सांस ही ले रहे होते हो क्या, बैठते हो क्या स्पेशली सांस लेने के लिए? नहीं ना, कुछ भी करते हो तो सांस चलती है, चाहे आप नहा रहे हो, धो रहे हो, या ऑफिस का काम कर रहे हो, या व्यापार का काम कर रहे हो, चाहे दिमाग से कोई काम कर रहे हो, बुद्धि से कोई काम कर रहे हो, या शरीर से कोई काम कर रहे हो, या ध्यान तपस्या कुछ भी कर रहे हो, सांस तो चलती ही है ना, क्योंकि वो आपके अस्तित्व का अभिन्न अंग है। ऐसे ही यम नियम प्राणायाम आसन प्रत्याहार और ध्यान अस्तित्व के अभिन्न अंग है, अभिन्न अंग उनको बना लेना होता है, कर करके कर करके कर करके। फिर आप देखोगे कि योगियों में जो सांस है वो बैठकर प्राणायाम करते नहीं दिखेंगे, क्यों? कि जब अनुलोम और विलोम में रहनी चाहिए थी चेतना, सांस उस तरह से चलनी चाहिए थी तो वैसे ही चलेगी, जब कपालभाति में चलनी चाहिए थी तो वैसे ही चलेगी, और जब नाड़ी शोधन होना है तो सांस अपने आप वैसे चलेगी, वो खाना खा लेंगे तो सांस अलग ढंग से चलेगी, जब वो खाना खा रहे होंगे तो अपान वायु का काम अपने आप शुरू हो जाएगा, जब वो मंत्र जाप कर रहे हैं तो प्राण वायु ऊपर चली जाएगी, अपने आप वो काम हो जाएगा, उदान प्राण, समान प्राण, व्यान प्राण, सब अपने आप, क्योंकि वो अस्तित्व में उन्होंने वो बिल्कुल ठीक कर ली अपनी मशीनरी। ऐसे समझना चाहिए कि आपका अस्तित्व जो एक मशीनरी के जैसे है ना, एक टेक्निकल मशीनरी है, तो आपने उसको बिल्कुल फिक्स करके ऑप्टिमम लेवल पे चला रखा है, ऑप्टिमाइजेशन कर दिया आपने उसका कि ये बिल्कुल सही ढंग से कैसे चलती है, वैसे चला दिया आपने उसको, प्रैक्टिस कर करके कर करके कर करके। तो पतंजलि क्या कहते हैं चित्त की अवस्थाओं में क्या ध्यान देने वाली बात है कि एक तो सिर्फ एकाग्र लोगों को ही अध्यात्म के मार्ग पे चलाया जा सकता है ना। बाकी सब लोग तो सिर्फ प्रॉब्लम लेके आएंगे, बाकी के वो जो तीन चित्त वाले लोग हैं तो संसार के दुखों से बहुत परेशान हैं, तो प्रॉब्लम लेकर आएंगे। थोड़ा बहुत उनके साथ धर्म को, उनको धर्म के कामों में लगाया जा सकता है ना, कि अच्छे कर्म बन जाएं उनके, बुरे कर्म का टाइम तो है ही उनके पास, और शरीर भी है और दिमाग भी है, बुद्धि भी है, पैसा भी है, सब कुछ है। तो बजाय इसके कि वो कुछ बुरे कर्म में लगा दें, अपना अपना सारा जीवन झोंक दें और अपने लिए खराब कर्म बना लें और बाद में वो सफ़र करें, उससे अच्छा उनको अच्छी चीज़ों में लगा दो तो अच्छे काम करते रहेंगे, वो ठीक सा काम करते रहेंगे। लेकिन अध्यात्म के मार्ग पर वो नहीं चलेंगे अभी तो। अध्यात्म के मार्ग पर सिर्फ एक शुद्ध चित्त वाला व्यक्ति, जिसके अंदर सत्व जाग चुका हो, है ना, ऐसा व्यक्ति और जो एकाग्र चित्त हो चुका हो, वही चलेगा। तो ये बहुत समझने वाली बात है। और सारे लोग इस जन्म में पहली बार अपनी अध्यात्म की यात्रा पर पहली बार चलेंगे, ऐसा नहीं है, है ना। बहुत सारे लोगों ने पूर्व जन्म में तपस्याएं की हैं, और मैं यहाँ पर वो तांत्रिक वाली तपस्याओं की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ जिन्होंने सच में योग के लिए, आध्यात्म के लिए, आत्मा के हित के लिए अपने, जिन्होंने योग की यात्रा की या तपस्याएं की हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, है ना। तो जो लोग योग के मार्ग पर चलते हैं, आध्यात्म के मार्ग पर चलते हैं, उन्होंने पहले भी कर रखी हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि हर इंसान जो है यम नियम से शुरू करेगा, या हर इंसान प्राणायाम से शुरू करेगा, या हर व्यक्ति जो है वो प्रत्याहार से ही शुरू करेगा। नहीं, कुछ चीज़ें उसके जीवन का, उसके अस्तित्व का अभिन्न अंग हो चुकी हैं, उसके लिए सांस लेने जैसी हो चुकी हैं, है ना। तो ये बहुत समझने वाली बात है कि चित्त की कौन सी अवस्था से जरूरी है, कौन सी अवस्था का होना जरूरी है, योग का अधिकारी कौन है, योग के ज्ञान का अधिकारी कौन है, अध्यात्म के ज्ञान का अधिकारी कौन है, है ना। एकाग्र शुद्ध चित्त वाला व्यक्ति। नमस्ते, जय शिवाय।